प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगिनी उषा दीदी जी। एक हाथ हिलाकर दीदी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आपका लौकिक और अलौकिक जन्म अफ्रीका की धरनी पर हुआ और उसके बाद लौकिक और अलौकिक दोनों ही रीति से भारत में आए और 1980 में अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। 1980 से 1992 तक मुंबई विले पार्ले में रहकर बाबा की खूब सेवाएं की और 1993 आपके जीवन का सुनहरा वर्ष रहा, जहां आपको एक गोल्डन लॉटरी मिली मधुबन निवासी बनने की। तो 1993 से मधुबन में रहकर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं और तब से लेकर आज दिन तक आपने कई सारी उपलब्धियां हासिल की है और जिसके परिणाम स्वरूप आपको समय समय पर ब्राह्मण परिवार अलग अलग टाइटल देता रहा, सबसे पहले कौन सा टाइटल दिया? उषा बहन कौन सी? एसएमएल वाली उषा बहन। उसके बाद कौन सी उषा बहन कहा? शास्त्रों की कहानी सुनाने वाली उषा बहन। उसके बाद कौन सी उषा बहन कहा? गीता का ज्ञान सुनाने वाली उषा बहन। और रिसेंटली बाहर वालों ने कह दिया डॉक्टर उषा बहन। और अभी अभी जो श्रीमद् भगवद गीता का महासम्मेलन हुआ, जिसमें धर्म जगत के संत महंत आचार्य स्वामीगण सभी बहुत बहुत प्रकांड पंडित पधारे और सभी ने यहाँ के पवित्रता की महिमा की है, उस पवित्रता को अनुभव किया है। और आज की मुरली में भी बाबा ने वरदान में पवित्रता की श्रेष्ठता का वर्णन किया है। तो क्या है यह पवित्रता? क्यों है इसकी महत्ता? कैसे हमारे जीवन में इसकी इंटेंसिटी बढ़े? इन सब पर प्रकाश डालेंगे आदरणीय दीदी जी। तो हम सुनते हैं दीदी को।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा के प्रतिदिन के मधुर महावाक्य जब सुनते हैं तो यह बात बाबा हमेशा लगभग हर मुरली में कहते हैं कि बाप क्यों आया है। बाप आया ही है पतितों को पावन बनाने, और खाली पावन बनाने आए ये नहीं, लेकिन पावन दुनिया को स्थापित करने आए हैं। तो जब बाबा हम बच्चों को प्रतिदिन ये स्मृति दिलाते हैं कि तुम्हें भी पावन बनना है, अनेकों को पावन बनाना है, और यहां तक बाबा कई बार अव्यक्त मुरलियों में कह दिए कि दुनिया के महान आत्माएं खुद तो पवित्र बनते हैं, लेकिन वो दूसरों को उस अथॉरिटी से कह नहीं सकते हैं, अपने शिष्य को भी नहीं कह सकते कि आप पवित्र बनो। लेकिन बाबा कहते हैं तुम बच्चे खुद भी पवित्र बनते हो और दूसरों को भी उसी अथॉरिटी से कहते हो, कैसे कह सकते हैं? और सहजता से हर कोई उस पवित्र बनने की प्रतिज्ञा धारण कर लेते हैं, तभी तो दुनिया की आत्माएं भी आश्चर्यचकित होती है कि कैसे आपके पास जो आने वाले लोग हैं, गृहस्थी लोग एक ही घर में रहते हैं, फिर भी पवित्र कैसे रह सकते हैं? क्योंकि महान आत्माओं ने तो घर बार छोड़ दिया पवित्र रहने के लिए, परिवार वालों को दुख दे दिया और छोड़ करके चले गए, तब जाकर के वो पवित्र रह सके। और यहां बाबा के बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी पवित्र सहज रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं? तो ये प्रमाण है कि परमात्मा शक्ति का वरदान कहो या परमात्मा सकाश मिलती है तब पवित्र रह सकते, नहीं तो नहीं रह सकते हैं। साधु सन्यासी आत्माएं, महान आत्माएं, वो पवित्रता की सकाश किसी को दे नहीं सकते हैं, क्योंकि वो खुद ही जैसे तैसे अपने आप में पवित्र रहने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन यहां बाबा के पास आते ही बाबा का वरदान मिलता है, बाबा की शक्ति मिलती है, क्योंकि परमात्मा परम पवित्र है। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि परमात्मा परम पवित्र होने कारण ही उनकी सकाश से हम सभी भाई बहने गृहस्थ में रहते हैं या कहां भी रहते तभी भी पवित्र रह सकते हैं, है ना। दूसरी बात, दुनिया में तो वह पवित्र रहते हैं या दवाइयां खा करके रहते हैं, जड़ी बूटियां लेते हैं तब पवित्र रह सकते हैं, या अपनी इंद्रियों का दमन करते हैं, है ना। लेकिन यहां बाबा के बच्चे न अपनी इंद्रियों का दमन करते हैं न कोई जड़ी बूटी लेते हैं, सहज रीति से पवित्रता को अपना सके हैं। इसलिए कहा कि यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि परमात्मा आकर के हमें पावन बना रहे हैं, है ना। पतित से पतित आत्माओं को भी हिम्मत आ जाती है पवित्र रहने की। और इसीलिए बाबा गृहस्थियों के लिए कहते हैं कि एक दिन आएगा जब ये महात्माएं संत आपके चरणों में झुकेंगे तो आपकी पवित्रता ही उनको झुकाएगी एक दिन, है ना। कुमार कुमारी के लिए बाबा हमेशा कहते हैं कि कुमार कुमारियों की पवित्रता गवर्नमेंट को झुकाएगी कि दुनिया के कुमार डिस्ट्रक्टिव कार्य में लगे हुए हैं और यहां के कुमार कंस्ट्रक्टिव कार्य में लगे हैं। तो कुमार कुमारियों की पवित्रता गवर्नमेंट को झुकाएगी और गृहस्थियों की पवित्रता साधु संन्यासी महात्माओं को झुकाएगी। ये भगवान के महावाक्य है। तो शक्ति भी तो वही दे रहा है, इस पवित्रता के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए चलने के लिए। नहीं तो ताकत नहीं है कलयुगी इंसान की जो बिना परमात्मा की मदद के वो अपने आप में पवित्र रह सके, नहीं रह सकते। दूसरी बात कि दुनिया के अंदर जब लोग दमन करते अपनी इंद्रियों का तो उसका रिएक्शन निकलता है कि मानसिक असंतुलन आता है। और यहां किसी का भी मानसिक असंतुलन नहीं होता है, है ना। लोग कहते हैं कि आप अगर नेचुरल जो फीलिंग्स है उससे अगर विपरीत दिशा में जाते हैं तो मानसिक असंतुलन आता है, लेकिन यहां किसी का भी मानसिक असंतुलन नहीं है। यही प्रमाण है कि परमात्मा शक्ति से हम पवित्र रह रहे हैं। परमात्मा शक्ति जो पवित्रता की हमें मिली है वरदान के रूप में, ये पवित्रता की श्रेष्ठता है जो श्रेष्ठ कर्म करने की अंदर से शक्ति प्रदान करता है। तो इसीलिए बाबा कहे कि भक्ति मार्ग में भी ब्राह्मणों के बिना कहीं कोई शुभ कार्य आरंभ नहीं होता है, क्योंकि ब्राह्मण को ही पवित्र माना जाता है। दुनिया के ब्राह्मण तो पवित्र नहीं है, लेकिन यादगार तो हमारा है ना कि हम ब्राह्मण आत्माएं पवित्र है। तो इसीलिए दुनिया के नामधारी ब्राह्मण भी आज तक अपनी आजीविका चला रहे हैं, भले पवित्र नहीं है तो भी। तो कितनी बड़ी बात है कि सारे कल्प तक का एक यादगार हम स्थापित कर देते हैं। यह है पवित्रता की श्रेष्ठता। दूसरी बात कि बाबा कहते हैं कि पवित्रता की श्रेष्ठता किसको कहा जाता है, जिसके अंदर रियलिटी और रॉयल्टी हो। पवित्रता माना ही रियल्टी और रॉयल्टी। रियल्टी माना सच्चाई, सत्यता है ना, सत्यता की शक्ति। तो रियलिटी माना सत्यता की शक्ति, या जिसको हमेशा हमारी परम आदरणीय दादी जानकी कहती थी, सच्चाई सफाई है ना। तो हम ब्राह्मण आत्माओं में बस सच्चाई सफाई आने लगती है। सच्चाई सफाई जब कहते हैं तो पहले क्या होना चाहिए, सफाई या सच्चाई? सच्चाई या सफाई? सच्चाई सफाई, कंफ्यूजन है हाँ? अच्छा, जो कहते हैं सफाई होनी चाहिए हाथ खड़ा करो, सफाई। अच्छा, जो कहते हैं सच्चाई होनी चाहिए, अच्छा मैक्सिमम सच्चाई के ऊपर है। हमारी परम आदरणीय दादी जानकी कहती थी सफाई। सच्चाई को धारण करने के लिए भी सफाई चाहिए। सफाई किस चीज की? मन बुद्धि और दिल की सफाई चाहिए। मन यानी विचारों की सफाई, बुद्धि की सफाई चाहिए, और दिल माना भावनाओं की सफाई चाहिए, तब सत्यता को धारण कर सकते हैं। जैसे कहते शेरनी का दूध सोने के बर्तन में रहता है, तो ठीक इसी तरह सत्यता को धारण करने के लिए पहले सफाई तो चाहिए। और सफाई के लिए ही तो रोज बाबा आकर के मुरली सुनाते हैं, सफाई कर रहे हैं ना। रोज मुरली क्या है? अंदर की सफाई चल रही है। रोज रोज मुरली सुन सुन करके, सुन सुन करके अंदर की सफाई हो रही है। जो अनेक जन्मों के, कई पुराने संस्कारों के, कई पुरानी आदतों के जो मैल जमा हुआ था, पहले उसको सफाई करना पड़ता है। सच्चाई माना वो सात्विकता, वो सतोप्रधानता। तो वो सात्विकता सतोप्रधानता तो तब आएगी जब पहले सफाई हो। तो ज्ञान से बाबा रोज हमारे मन बुद्धि दिल को साफ करता है। थोड़ी भी धूल जमती है दिन भर में, वापस बाबा दूसरे दिन क्या करेगा? सफाई कर देता है। तो इसीलिए सफाई चाहिए तो सच्चाई को धारण कर सकते, रियलिटी तभी आ सकती है। और रियलिटी आई है, सच्चाई आती है, उसका प्रमाण है रॉयल्टी, सभ्यता। सच्चाई जितनी जितनी आती जाती है, उतनी हमारे व्यवहार में वो रॉयल्टी, वो सभ्यता नजर आती है। बाबा ने हर प्रकार की सभ्यता हमें सिखाई है, उठने की, बैठने की, बोलने की, चलने की, फिरने की, व्यवहार की, हर प्रकार की सभ्यता, हर प्रकार की रॉयल्टी। कई बार बाबा मुरलियों में कहते, बच्चे तुम देवताओं से भी उच्च हो, है ना? अगर देवताओं में इतनी रॉयल्टी है तो तुम्हारे में तो कितनी रॉयल्टी। अभी पिछले सप्ताह की ही मुरली में बाबा ने कहा कि देवताओं में रॉयल्टी है, तुम देवताओं से भी उच्च हो, तो तुम्हारे अंदर कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। तो अमृत वेले से लेकर रात्रि तक की जो हर कर्म की रॉयल्टी है, वो हमारे जीवन में आने लगती है। अर्थात कि सत्यता जितनी स्पष्ट होने लगती है जीवन के अंदर, तो सत्यता का प्रमाण है सभ्यता, है ना? तो रियलिटी और रॉयल्टी ये है पवित्रता की श्रेष्ठता। तो उस आधार पर हमें अपने आप को चेक करना है कि वो सभ्यता ही है। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं अव्यक्त मुरलियों में कि कितनी भी बड़ी भीड़ क्यों ना हो, लेकिन एक ब्राह्मण खड़ा होगा ना, वो दिखाई देगा ये अलग लगता है, भीड़ में भी अलग महसूस होता है, भीड़ से भिन्न स्पष्ट उसके चेहरे पर वो नूर दिखाई देने लगता है। तो इसीलिए कि भीड़ में भी अगर अलग दिखाई दे तो कितनी सभ्यता और कितनी सत्यता स्वयं में आई है, है वही पुराने चोले में, लेकिन पुराने चोले में होने के बावजूद भी बाबा का गरीब से गरीब बच्चा भी जो होगा वो भी उस सभ्यता में चलता है, उस रॉयल्टी से चलता है, उस एक रूहानी नशे में रहता है। हम कौन बनने वाले है ना, तो नशे का नूर जो है उसके चेहरे से स्वतः टपकने लगता है। दूसरी बात, परम आदरणीय दादी जानकी हमेशा कहती है कि जिसके अंदर सत्यता है तो सत्यता चार गुण व्यवहारिक स्तर पर जरूर ले आता है। और वो चार गुण कौन से स्वतः आ जाते, यानी पांच का कंबाइंड एक है जो हर ब्राह्मण आत्मा में स्वतः आने लगता है। तो जितनी जितनी सत्यता अंदर में होगी उतनी गंभीरता आएगी। मम्मा का चेहरा इसीलिए देखो, गंभीरता की मूर्ति है ना? सत्यता को सिद्ध करने की जरूरत नहीं, सत्यता स्वयं में सिद्ध है, तो वो गंभीरता आ जाती है। दूसरा गुण धैर्यता, धीर्यता नहीं होगी उसका उठना बैठना चलना फिरना, उस सभ्यता के कारण इतना धैर्यवत होगा, ये नहीं भागम भाग करके कुछ तोड़ फोड़ करना चालू कर दे, है ना, दुनिया के लोग क्या करते हैं। सच्चाई नहीं है तो क्या होगा, धैर्यवत नहीं है। लेकिन बाबा के बच्चों के अंदर जैसे जैसे सत्यता आती जाती है तो गंभीरता और धैर्यता उसके जीवन का गुण बन जाता है। तीसरा गुण सत्यता, गंभीरता, धैर्यता, चौथा गुण मधुरता, उसके हर बोल चाल में वो मधुरता स्पष्ट होने लगती है। और पांचवा गुण है नम्रता, निर्माणता। ये पांचों का बहुत गहरा आपस में कनेक्शन है, यही देवताई लक्षण दिखाए गए हैं। तो इसीलिए सत्यता है, रियलिटी अंदर है, तो रॉयल्टी के साथ साथ ये पांच गुण व्यवहारिक स्तर पर। इसलिए बाबा का ज्ञान खाली सत्संगों की तरह सुनने सुनाने के लिए नहीं है, लेकिन बाबा का ज्ञान है व्यवहारिक कुशलता ले आने के लिए। हमारा सबके साथ जो व्यवहार है वो इन्हीं पांच गुणों के आधार पर हो रहा है, इसीलिए अलग दिखते हैं, भीड़ में भी ब्राह्मण अलग नजर आता है, क्योंकि उसके चाल चलन व्यवहार में ये पांचों गुण जैसे सहजता से फ्लो हो रहे हैं, उसकी ऊर्जा एक नेचुरल रूप से फ्लो होती है, प्रवाहित होती है। इसलिए बाबा कहे कि पवित्रता की श्रेष्ठता है रियलिटी और रॉयल्टी। दूसरी बात, पवित्रता की श्रेष्ठता क्या है, तो हमेशा आते ही बाबा हम बच्चों को स्लोगन देता है पवित्र बनो योगी बनो, है ना, पवित्र बनो योगी बनो, या योगी बनो पवित्र बनो, यानी योगी का आधार ही पवित्रता है। बिना पवित्रता के योग नहीं लगता है। अगर कोई शिकायत करते हैं कि हमारा योग नहीं लग रहा है, माना कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रकार की इम्प्योरिटी जरूर है, तभी उसका योग नहीं लगता है, तभी मन भटकता है। पवित्रता अगर हो तो मन भटक ना सके, वो योगी नेचुरल हो जाए। ये पवित्रता की श्रेष्ठता है कि वो एक नेचुरल योगी बन जाता है, उसको मेहनत नहीं लगती है। बाबा की लास्ट अव्यक्त मुरली जो हम सभी ने सुनी पिछले संडे की, उसमें बाबा ने बहुत अच्छी पवित्रता की गहराई, लेकिन बाबा ने कहा फिर बाबा उसकी गहराई बाद में सुनाएंगे, है ना। तो उसमें बाबा ने कहा तन से ब्रह्मचारी मन से ब्रह्मचारी। मन कहीं कोई व्यक्ति के लगाव में नहीं होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा संबंधों के ब्रह्मचारी और संस्कारों के ब्रह्मचारी। ये चार बातों की गहराई बाबा ने कहा बाबा कभी आगे सुनाएगा, लेकिन ये चार प्रकार के ब्रह्मचर्य की बातों पर विचार सागर मंथन चल रहा था कि योगी माना जिसको कहा जाए कि मन में थकावट का अनुभव ना हो, मन में बोझ ना हो, वो नेचुरल योगी है। अगर मन के ऊपर व्यर्थ विचारों का बोझ है, तभी बाबा ने कहा व्यर्थ भी एक प्रकार की इम्प्यूरिटी है, व्यर्थ भी अपवित्रता है। तो इसी तरह योगी नहीं बन पा रहे हैं, मन भटक रहा है, तो कहां भटक रहा है? थकावट का अनुभव कर रहे हैं, योग में बैठते ही थकावट महसूस होने लगे, नींद आ जाए, तो क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं व्यर्थ के कारण जो है नेचुरल योगी नहीं बन पा रहे हैं, तो वो व्यर्थ की इम्प्योरिटी है। इसलिए बाबा कहे नेचुरल योगी बनो। बाबा मम्मा दादियों के पुरुषार्थ में और हमारे पुरुषार्थ में अंतर क्या है? बहुत सुंदर, हम बहनों का जब बैठे थे ऐसे ही चिट चैट कर रहे थे, तो जो साकार बाबा के समय की बहने थी तो उन्होंने बताया कि बाबा मम्मा के पुरुषार्थ में कभी युद्ध नहीं था। हम लोगों के पुरुषार्थ में हमें युद्ध करना पड़ता है, हमें अपने संस्कारों के साथ युद्ध करना पड़ता है, पुराने संस्कारों के साथ। बाबा मम्मा ने कभी कोई बात में युद्ध ही नहीं किया। जो शिव बाबा की मुरली में आया सहज धारण, और हम लोगों को अपने आप से भी युद्ध करना पड़ता है, अपने संस्कारों से युद्ध करना पड़ता है, अपने स्वभाव से युद्ध करना पड़ता है, परिस्थिति के साथ अपने आप को उस मर्यादा में चलाने के लिए युद्ध करना पड़ता है। या हम चल रहे हैं किसी के संस्कारों के साथ टक्कर हो जाती तो युद्ध करना पड़ता है, लेकिन बाबा मम्मा का कभी कोई संस्कार टक्कर हुआ ही नहीं। चलो बाबा मम्मा का संस्कारों का टक्कर नहीं हुआ, लेकिन जो दादियां थी उस समय तो 350 थे यज्ञ के अंदर, लेकिन इन्हों का भी आपस में कभी संस्कारों का टक्कर नहीं हुआ। सहज पुरुषार्थ थी। बाबा मम्मा ने जो कहा, यशु बाबा ने जो मुरली में आज्ञा दी, जैसे दादियों ने मेहनत नहीं करनी पड़ी, युद्ध नहीं करना पड़ा धारण करने के लिए, लेकिन सहज धारण हो जाता है। आज हम लोगों को अपने संस्कारों के साथ कितना युद्ध करना पड़ता है, तब जा करके हम धारण कर पाते हैं। नहीं तो वो युद्ध के साथ चलते रहो। बाबा कई बार इसलिए अव्यक्त मुरली में कहते भी है कि बाबा को मेहनत वाले योगी नहीं अच्छे लगते हैं, मोहब्बत वाले योगी अच्छे लगते हैं। मेहनत करना माना युद्ध करना, तो युद्ध न करना पड़े। जैसे जो बात आई मुरली से उसी दिन उसको ग्रहण कर लिया जाए, इतनी सहजता सरलता जब आ जाए तो यह है प्योरिटी की श्रेष्ठता। अगर बहुत मेहनत करने के बाद, युद्ध करने के बाद उसको ग्रहण करे तो क्या कहेंगे। आदरणीय दादी जानकी बताते थे कि जब यज्ञ के अंदर दादियां आई तो सब दिवाली 36 में इन लोगों का समर्पण हो गया था, और दादी 1.5 साल पीछे आई यज्ञ में। तो दादी को बड़ा ये रहता था, ये लोग 1.5 साल में तो कितना कुछ सीख लिए और मैं 1.5 साल पीछे रह गई। तो एक बार बाबा से जाकर के कहा कि बाबा मैं 1.5 साल पीछे आई हूं, तो मैं ऐसा क्या पुरुषार्थ करूं जो इन लोगों के साथ हो जाऊं। मैं 1.5 साल पीछे, उनको बड़ा खटकता था, 1.5 साल पीछे बाबा ने मुझे बुलाया। तो बाबा ने कहा प्रतिदिन की मुरली 6 बार स्टडी करो, अध्ययन करो। तो उन्होंने सोचा मैं 6 बार क्यों करूं, 12 बार करूं। इसलिए दादी कभी कभी अपना अनुभव सुनाती थी तो कहती थी मैं रोज की मुरली 12 बार पढ़ती हूं, और 12 बार पढ़ती थी वो, है ना। क्यों? क्योंकि ये लोग आगे निकल गए, मैं तो 1.5 साल पीछे आई। हम कितने साल पीछे आए, हम कितने साल पीछे आए, हमें कितनी बार पढ़नी चाहिए रोज की मुरली। है 15-20 बार ही खाली तभी ये दादियां इतना आगे निकल गई, और इसीलिए उनके कभी संस्कारों की टक्कर नहीं हुई, आपस में इतनी यूनिटी। ये नहीं कि विचार अलग नहीं होते थे, मीटिंग होती थी विचार अलग होते थे, लेकिन अलग विचार होने के बावजूद भी एकता थी। किसी ने एक विचार दिया, किसी ने दूसरा विचार दिया, और फिर भी एकता के, या तो दोनों विचार अच्छे हैं तो दोनों ही ग्रहण कर दिया जाए, या जो अच्छा है उसमें, तो उसमें कभी मतभेद में आकर के कभी कोई कार्य नहीं हुआ, है ना। तो जैसे बाबा कहते थे बालक बन के विचार दिया लेकिन मालिक बन करके, अरे मालिक बन करके विचार दिया लेकिन बालक बन करके स्वीकार, जो भी होगा बड़ों ने जो स्वीकार किया। निमित्त बड़े थे बड़ी दादी, बाकी तो हम उम्र ही थे, सभी दादियां हम उम्र थी, लेकिन उसके बावजूद भी संस्कारों की टक्कर नहीं या मेहनत का अनुभव नहीं कि भई बहुत मेहनत करनी पड़ रही है अमृत वेले उठने में, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है हम जैसे मुरली क्लास के लिए जाने के लिए। कई लोग तो 10 बार सोचते हैं जाए नहीं जाए, जाए नहीं जाए, सोए रहे क्या करें है? तो इन लोगों को कभी मेहनत नहीं लगी, बाबा के प्यार में नेचुरल चलते रहे। ये अंतर है हमारा पुरुषार्थ और ये दादियों या बाबा मम्मा के पुरुषार्थ में। यह है उनकी पवित्रता की श्रेष्ठता। माना कहीं न कहीं हमारे अंदर क्या कहेंगे, इम्प्यूरिटी का अंश है, तभी व्यर्थ संकल्प चलते हैं, इसलिए नेचुरल योगी नहीं है। तो पवित्र बनो, योगी बनो, ये जो बाबा ने स्लोगन दिया था कि जितनी जितनी पवित्रता आती जाएंगे उतना नेचुरल योगी सहज बनते जाएंगे। इसलिए बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि बाबा को योग लगाने वाले योगी नहीं चाहिए, योगी जीवन वाले योगी चाहिए। योगी जीवन बनाने वाले योगी चाहिए। तीसरी बात जो कहा जाता है कि ब्रह्मचारी बनना, ब्रह्मचारी माना ब्रह्मचर्य को नहीं, बाबा ने स्पष्ट किया कई बार मुरलियों में, लेकिन जो ब्रह्मा ने आचरण करके सिखाया उस आचरण को प्रैक्टिकल जीवन में ले आना, यह है पवित्रता की श्रेष्ठता। बाबा ने हर एक बात अपने आचरण से उसको सिखाई बच्चों को, कैसे आचरण करना है, कैसे कर्म में आना है। बाबा एट द एज ऑफ 93, आप सोच सकते हैं, हम लोगों को फिर भी सहारा चाहिए, लेकिन आप छोटे हॉल में जाकर देखो, बाबा जब बैठता था तो संदल पर, वो बिना पीछे सहारा वाली, और कैसे बाबा टटार बैठता था। हम लोग झुक जाते हैं, क्यों? क्योंकि भाई एज होती जा रही है। क्या बाबा की एज नहीं थी? भाई बीमार होते हैं, इतनी दवाइयां लेनी पड़ती है, तो नींद आ जाती। मम्मा को कैंसर हुआ था, कैंसर के कितनी हैवी डोज की दवाइयां लेती थी, फिर भी अमृत वेला। बाबा मम्मा ही कराते थे ना अमृत वेला, हिस्ट्री हॉल में आपने दो संदल देखी है, बिना सहारे वाली। क्या उनको एज, बीमारी कुछ नहीं लगा? फिर भी एकदम टटार, एकदम सीधा बैठते थे बाबा, है ना? ये कौन सी शक्ति थी? और वो शक्ति की श्रेष्ठता देखो, बाबा के सामने हिसाब किताब नहीं आए, आए। बाबा को भी ऑपरेशन हुआ, बाबा के सामने भी हिसाब किताब आए, सब कुछ हुआ। मम्मा के सामने भी आए, दादियों के सामने भी आए, लेकिन उनका सोना और उठना इतना नेचुरल होता था कि सहजता से आंख सुबह खुलती थी 3:30 बजे और आ जाते थे। तो इसीलिए कहा कि ब्रह्मचर्य माना ब्रह्मा बाबा ने जो आचरण करके सिखाया, ये हम भी आचरण करें, आचरण में लाए। इसलिए कहा तन का ब्रह्मचर्य, मन का ब्रह्मचर्य, संबंधों का ब्रह्मचर्य। पवित्रता की गहराई किसको कहा? श्रेष्ठता, वफादारी। दुनिया में भी जब संबंधों में वफादारी होती है, संबंधों की ब्रह्मचर्य किसको कहा? संबंधों का ब्रह्मचर्य माना वफादारी संबंधों में। तो बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध है, तो वो सर्व संबंध की वफादारी कितनी है, ये पवित्रता की श्रेष्ठता। ये नहीं कि माता पिता के रूप में तो हम आज्ञाकारी बन करके चल रहे हैं, टीचर की हर शिक्षाओं को धारण करने के हिसाब से वहां भी वफादारी है, सतगुरु के प्रति भी वफादारी है, लेकिन वफादारी है तो फरमान वरदार जरूर है। बाबा के हर श्रीमत, हर फरमान को आज्ञाकारी बन करके पालन करना, ये है उस संबंध की वफादारी। तो बाबा के साथ सर्व संबंधों को जोड़ करके निभाना बाबा की मुरली में है आने वाले संडे की, कि बाबा के साथ सबका प्यार तो जरूर है, प्यार है तभी तो यहां है, लेकिन प्यार को निभाना कितना है, निभाने वाले कितने हैं, या निभाने में ही तो परसेंटेज हो जाता है, नंबर वार हो जाते हैं, प्यार में तो 100% सबका प्यार है बाबा के साथ, लेकिन प्यार को निभाने में ही तो नंबर वार हो जाते हैं। उस संबंध में वो वफादारी, तो इसीलिए कहा कि पवित्रता की श्रेष्ठता माना उस संबंध की वफादारी होना और वफादारी के आधार से चलना। फिर पवित्रता की श्रेष्ठता है डबल अहिंसक, डबल अहिंसक। काम विकारों को तो जीत लिया हम सभी ने परमात्मा शक्ति के वरदान के कारण, लेकिन बाबा कहे सत्युग में दोनों ही हिंसा नहीं होती है, न काम विकार की न क्रोध की। क्रोध के कारण ही तो लड़ाई झगड़ा मारपीट आदि होती है, काट देते एक दो को, है ना। तो यह स्थूल हिंसा भी ना हो, अर्थात वाचा की हिंसा, भावनाओं की हिंसा, उसमें अभी तक हम कंप्लीट नहीं हुए हैं। काम विकार को जीत लेना ये तो सहज है, लेकिन कामनाओं को जीतना, इसकी गहराई वहां आती है कि कामनाओं को जीतना कितना हुआ। कामनाएं माना इच्छाएं, ये चाहिए चाहिए की चाहना, उसको जीतना, और क्रोध विकार को जीतना, शब्दों के द्वारा भी हिंसा होती है। जहां पर भी शुभ भावना नहीं है, आज वरदान में यही कहा बाबा, शुभ भावना हो और हमने कोई भी शब्द कहे तो सामने वाला भी उस भावना को स्वीकार करता है, लेकिन जहां शुभ भावना नहीं है तो जो भी शब्द निकला वो तीर की तरह है, किसी को कितना दुख दर्द दे देता है। तो ये हिंसा तो होती है, तो इसीलिए कहा पवित्रता की श्रेष्ठता माना जहां डबल अहिंसक हो, क्योंकि वही आत्माएं सत्युग में जाने के अधिकार को, पात्रता को विकसित कर लेती है। इसीलिए बाबा के घर में आते हैं तो कई लोग बाबा के कमरे में झोपड़ी में जाकर के अपना दृढ़ संकल्प बाबा को लिख करके देते हैं, आज से क्रोध छोड़ देंगे, क्रोध विकार संपूर्ण रीति से छोड़ देंगे। छूटता है छूटता है, क्या कहेंगे, क्यों नहीं छूटता है, सोडा वाटर हो जाता है, यहां से जाते ही नीचे जाते परीक्षा आती है तो सोडा वाटर हो जाता है, क्यों नहीं छूटता है। फिर सोचेंगे अरे बाबा के कमरे में बाबा की झोपड़ी में ये डाल करके आए, इतना योग किया फिर भी नहीं छूटा, क्यों नहीं छूटता है, क्योंकि मान लो कि ये कमरे में अंधेरा हो और किसी को कहा जाए अंधेरे को बाहर निकालो, निकलेगा, क्यों, क्योंकि अंधेरे का स्रोत नहीं है, लेकिन प्रकाश का स्रोत है। इसीलिए प्रकाश जलाओ तो अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। अंधेरे को निकाला नहीं जा सकता है। ऐसे जीवन में ये जो कमजोरी है ना, अंधकार है। अगर आपने बाबा के सामने ये दृढ़ संकल्प किया कि ये कमजोरी जो है मेरी, गुस्सा करने की, क्रोध करने की, उसको मैं छोड़ के जाती हूं, निकलेगा नहीं, क्योंकि अंधेरे को निकाला नहीं जाता है, कमजोरी को निकाला नहीं जाता है। शारीरिक कमजोरी व्यक्ति को आ जाए तो भी वो डॉक्टर के पास जाकर के ताकत की गोली लेगा, विटामिन लेगा, तब जाकर के कमजोरी दूर होती है। आप सोचो कि कमजोरी है शारीरिक, ये छूट जाए, ये छूट जाए, ऐसे थोड़ी छूटती है। ताकत की गोली लेनी पड़ती है, विटामिन लेना पड़ता है, तब जाकर के ये कमजोरी छूटती है। ऐसा खुराक खाना पड़ता है, तब जाकर के वो कमजोरी दूर होती है। तो क्रोध की कमजोरी जो है, काम की कमजोरी जीत सके, क्योंकि ईश्वर का वरदान था। हर बच्चे को जन्मते ही बाबा वरदान देते, इसलिए छूटा है, अपने आप से नहीं छूटा है। आप ये मत समझना कि हमने अपने आप जीत लिया। अगर काम छूट गया और जीत लिया तो क्रोध को जीत कर दिखाए, नहीं छूटता है। मोह को जीत कर दिखाए, लोभ को जीत कर दिखाए, अभिमान को जीत के दिखाए, नहीं जीत पाते हैं। काम को इसीलिए जीत सके क्योंकि बाबा का वरदान आते ही हर बच्चे को मिल जाता है, इसलिए जीत सके। लेकिन क्रोध को दृढ़ संकल्प करके मैंने चिटकी डाल दिया वहां भंडारी में, उससे छूटने वाला नहीं है, क्योंकि उसका कोई स्रोत नहीं है। ये कमजोरी का कोई स्रोत नहीं है जिस कारण से उसको छोड़ सके। लेकिन ताकत धारण करो, शक्ति को धारण करो, तो कमजोरी आप ही दूर हो जाएगी। तो पहले तो मुझे ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये क्रोध की कमजोरी मेरे अंदर क्यों है, क्यों है, कौन सी शक्ति का अभाव है? क्या मेरे अंदर सहन शक्ति का अभाव है इसलिए गुस्सा आता है, या मेरे अंदर धैर्यता की कमी है इसलिए गुस्सा आता है? कई लोग होते हैं ना धैर्य, जल्दी करो जल्दी करो, और कोई जल्दी नहीं करता तो गुस्सा आता है। तो क्या धैर्यता की कमी है इसलिए गुस्सा आता है? एनालाइज करो अपनी पर्सनालिटी को। या शांति की कमी है इसलिए गुस्सा आता है? कौन सी शक्ति की कमी है? और अमृत वेले बैठ करके उस शक्ति का आवाहन करो। स्वयं को समझो कि कौन सी शक्ति के अभाव के कारण ये कमजोरी है, ये अंधेरा है। अब ये अंधेरे को मिटाना है तो मुझे कौन सी शक्ति का आवाहन करना होगा? तो अमृत वेले बैठकर सर्वशक्तिमान बाबा से उस शक्ति का आवाहन करो। लगातार हफ्ते तक, और फिर भी अगर थोड़ा कमी महसूस हुई तो 10 दिन तक लगातार अमृत वेले उस शक्ति का आवाहन करो, सहन शक्ति का आवाहन करो, या धैर्यता की शक्ति का आवाहन करो। अगर तीनों ही कमी है तो एक एक सप्ताह उसका आवाहन करो और सर्वशक्तिवान बाबा से उस शक्ति का वरदान लो। महसूस करो बाबा का वरदानी हाथ, कल वरदान में था ना, बाबा का वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है, ये महसूस करो। बाबा मुझे दे रहा है, विजय भव का तिलक दे रहे हैं। अमृत वेले उसका आवाहन करो, फिर आप देखो हफ्ते के बाद वो कमजोरी मिट जाएगी, अच्छा फिर भी अगर लगता है कि थोड़ी परसेंटेज में है तो 10 दिन तक आवाहन कर लो, है ना? 52 सप्ताह है साल में, एक एक कमजोरी को मिटाने के लिए एक एक शक्ति का आवाहन करो, 52 सप्ताह में 52 शक्ति का आवाहन करो, तो साल के अंदर क्या हो जाएगा? मास्टर सर्वशक्तिमान बनेंगे नहीं बनेंगे? वो कमजोरी रहेगी, समाप्त हो जाएगी। तो प्रकाश का आवाहन करो तो अंधेरा दूर, शक्ति का आवाहन करो तो कमजोरी दूर होगी। इस रीति से डबल अहिंसक बनो, है ना? ये प्रैक्टिकल प्लान है। बाबा के घर में आए हो, यहां से ही अमृत वेला आवाहन करना शुरू करो। देखो कौन सी बात का परिवर्तन मुझे अपने अंदर लाना है, एनालाइज करो और फिर उसके हिसाब से अपना प्लान बनाओ। ये शक्ति मुझे चाहिए तो ये मैं शक्ति चाहिए, तो बाबा तो बैठा है शक्ति देने के लिए। बाबा तो बच्चों का आवाहन कर रहे हैं, ले लो शक्ति जितना लेना है, क्योंकि कल्प में एक ही बार तो मिलती है ये शक्ति, है ना? तो इसीलिए जो है बाबा जो हम बच्चों को कहते हैं तो डबल अहिंसक बनना है मुझे। इसीलिए कहा दूसरे कमजोरियों को जीतने के लिए तो पुरुषार्थ है और उसके लिए मुझे युद्ध नहीं करनी है, भगवान स्वतः मुझे शक्ति देने के लिए बैठा है। रोज बाबा कहते बच्चे आओ अमृत वेले, ले लो खजाना, ले लो, ऐसा ना हो टाइम चला जाए और लास्ट में हमें महसूस हो और पश्चाताप करना पड़े। अरे बाबा रोज खुला भंडार खोल करके बैठता था और मैंने लिया ही नहीं, क्यों नहीं लेते हैं? क्यों नहीं लेते हैं? गफलत। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे गफलत करते हैं। और गफलत क्यों होती है, क्यों होती है? या आलस या अलबेलेपन के कारण गफलत करते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे अब गफलत नहीं करो, अब अगर गफलत कर दिया ना तो बहुत पश्चाताप के आंसू निकलेंगे, इसीलिए अब गफलत नहीं करो, अटेंशन में आ जाओ। आलस अलबेलेपन के होता है, चलता है कौन बना है कौन नहीं बना, अरे मुझे मैं कौन होती हूँ उसको एनालाइज करने के लिए कि कौन बना है कौन नहीं बना है, मुझे तो बनना है ना, दूसरे नहीं बने तो कोई बात नहीं, मुझे चांस दे रहे हैं, मैं तो बन जाऊं, मैं तो बन जाऊं। तो इसीलिए गफलत आलस्य अलबेलेपन के कारण कर रहे हैं। तो अब बाबा कहे बच्चे सावधान सावधान, है ना? इसीलिए जब शादी करते हैं ना फेरे में क्या करते, सावधान सावधान भाई, हर कदम में सावधान। वो एक महात्मा की कहानी है ना, स्वामी विवेकानंद कौन किसकी कहानी है कि उसकी शादी के लिए बैठा वो मंडप में और वो पंडित जी बार बार सावधान साव, उसको लगा कितना सावधान रहेंगे, जिंदगी भर थोड़ी सावधान रहेंगे, भाग गया वहां से उठ करके। तभी स्वामी विवेकानंद बन पाया, है ना? वो सावधान सावधान खटकता रहा, सावधान कितना सावधान रहेंगे, बोले जिंदगी भर थोड़ी सावधान रहेंगे सावधान। तो बाबा भी कहते सावधान, है ना? माया से सावधान, ठीक है ना? इसीलिए जब सावधान हो जाते हैं तो गफलत नहीं होती है, लेकिन गफलत तभी होती है जब सावधान नहीं रहते। कहा जाता है ना, रास्ते पर भी नहीं आता है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो ऐसे ही हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहे अभी गफलत नहीं करो, अब सावधान। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।
पवित्रता की गुह्यता सबको स्पष्ट हुई होगी, क्लैरिटी मिली होगी, डीप अंडरस्टैंडिंग। दीदी का एक हाथ हिलाकर धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।